नमस्कार, मैं सुनील पाठक सांवरा आप सभी लोगों का हाशमेव जयते के इस अनूठे दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूं। अनूठा इसलिए कह रहा हूं कि आजकल किसी भी चेहरे पर हंसी देखने को बहुत कम ही मिलती है और ना ही कोई सच्चा दरबार लगता है, लेकिन आज यहां पर एक ऐसा लगा हुआ है दरबार जहां पे ना कोई राजा है ना है कोई सरकार, सब अपने आप में स्वतंत्र हैं। यहां पर बैठे पत्नी पीड़ित पति भी अपने आप में स्वतंत्र हैं। घर पर तो बेचारे कुछ नहीं बोल पाते, यहां पर बोल भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। हंसी की जब बात आती है तो मुझे एक घटना याद आती है। हमारे एक वरिष्ठ कवि अमेरिका में कवि सम्मेलन करने गए और वहां पर उन्होंने लोगों को हंसाने के सारे प्रयास किए। घर वाली पर कविता पढ़ी, साली पर कविता पढ़ी, नेताओं पर व्यंग किया, पर उन पर कुछ असर न हुआ। तो उन्होंने एक प्रयोग किया और कहा कि माना कि आपका बौद्धिकता से ठेका है, लेकिन आपने कभी बैल को हंसते हुए देखा है? कभी कोई भैंस मुस्कुराते हुए नजर आई? कभी गाय ने बैल को देखकर पूंछ हिलाई? ये जिंदगी का सबसे बड़ा तर्क है, हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है। हंसी जानवर और इंसान के बीच का फर्क है, और इसी फर्क को महसूस किए हैं हमारे प्रख्यात कवि दिनेश बावरा जी, और आपको हंसाने गुदगुदाने यहाँ पर आ रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, हमारे कवि दिनेश मिश्र बावरा जी का।
यहाँ पर उपस्थित सभी बुद्धिमान श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे तालियों के गड़गड़ाहट के बीच बड़े सम्मान के साथ उठाया। आप आज चेयर पर बैठकर चेयरमैन हो, मैं चौकी पर खड़ा हो चौकीदार हूँ। इसके लिए आप एक बार अपने सम्मान में ताली बजा लें, फिर आगे का प्रोग्राम मैं शुरू करूँ। आपने देखा कि सुनील पाठक ने कितने जोशो खरोश के साथ मुझे उठाया, भगवान इसको उठाए। और हमारे देश की परंपरा रही है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ। आज सुनील संचालक की गद्दी पर उपस्थित हुआ है। मुझे याद है जब सुनील कवि नहीं था तो इसके गुरु ने इसे कविता लिखनी सिखाई, कविता पढ़नी सिखाई, मंच पर जमना सिखाया, समय हो जाने पर शादी भी करा दी। शादी हो जाने के बाद जब सुनील अपने पर्सनल काम के लिए फूलों से सजे कमरे में जाने लगा तो पीछे पीछे इसके गुरु भी चले। मैं मौजूद था, मैंने कहा क्या कर रहे हो साहब, ये शरीफों की बस्ती है, यहाँ आपको यह सब काम शोभा नहीं देता। तो उनका जवाब था कि अगर मैं बाहर रह गया तो अंदर संचालन कौन करेगा। ऐसे चरित्रवान गुरु के शिष्य आज हमारे बीच मौजूद हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। और क्या बताऊँ सुनील, मुझे एक घटना याद आ रही है।
स्वागत है भाई।
कि एक कबाड़ी की दुकान में एक फोन आया और फोन करने वाले ने कबाड़ी से पूछा कि 1.5 इंच का सलिया है क्या? उन्होंने कहा है। बोला है तो मुंह में डाल ले। और वो थोड़ी देर परेशान रहा। परेशान होने के बाद कुछ देर के बाद टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन लगाया। बोला साहब अभी कुछ देर पहले मेरे पास टेलीफोन आया था, उसने पूछा 1.5 इंच की सलिया है क्या? मैंने कहा है। उसने कहा मुंह में डाल ले। मैनेजर ने पूछा कितना वक्त हो गया? बोले 1.5 घंटे हो गए। बोले अब निकाल ले। ऐसी बातें हमारे साथ होते रहती हैं, लेकिन आज मैं जो हूँ आपको और एक घटना से वाकिफ कराना चाहता हूँ। मुझे याद है कि एक नए नए जोड़े की शादी हुई और शादी हो जाने के बाद दोनों फिल्म देखने गए, कहो ना प्यार है। फिल्म चल रही थी जब उसके अंदर एक रोमांटिक सीन आया तो पत्नी ने पति को घुटना मार के कहा, देखते हो जी ऋतिक रोशन अपने हीरोइन से कैसा क्या प्यार कर रहा है, एक तुम हो कि जो कि प्यार ही करने नहीं आता। पति बड़ा हाजिर जवाब था। उसने कहा कि आपको पता नहीं है कि ऋतिक रोशन को इनसे प्यार करने का करोड़ों रुपया मिलता है, तू अपने बाप से 1 लाख रुपया दिला दे, इससे अच्छा प्यार करके नहीं दिखाऊं तो मेरा नाम बदल देना।
क्या बात है,
ये तो हीरो की बात रही, लेकिन आज मैं आपके सामने एक विलेन को लेकर आ रहा हूँ। मुझे विश्वास है इस विलेन रूपी कविता को आप स्वीकार करेंगे और इसे सराहेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है गब्बर अंकल। गब्बर एक ऐसा कैरेक्टर शोले से उभर कर आया जो काफ़ी सराहा गया। उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कविता लिखी और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ गब्बर अंकल।
स्वागत है भाई, स्वागत है।
एक दिन गब्बर अंकल आए मेरे घर, मैं गया डर, मैंने जोरों से चिल्लाया, माँ मेरे सर पर नींद का चक्रव्यूह छा गया है, मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि गब्बर आ गया है। माँ ने कहा, बेटा तुम इनसे डरते हो, ये तो बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े सच्चे हैं। तब तक गब्बर अंकल ने कहा, बेटा इधर आओ, कालिया ने गोली खाई थी, तुम कैडबरी खाओ। मैं गब्बर अंकल के गोद में ज्यों गया, मेरे जिगर का डर छू हो गया। तब मैंने गब्बर अंकल से खूब सारा किया सवाल, मैंने कहा, अंकल तुमने शोले में बहुत किया बवाल। मैंने कहा, अंकल ठाकुर को दो चार हाथ मार देते, हाथ काटने की क्या थी जरूरत, बेचारी जया विधवा तुम्हें बताओ कितनी थी खूबसूरत। मैंने कहा, अंकल जब धर्मेंद्र ने इतना चिल्लाया तो तुमने बसंती को क्यों नचाया। मैंने कहा, अंकल जब धर्मेंद्र ने इतना चिल्लाया तो तुमने बसंती को क्यों नचाया। मैंने कहा, अंकल कुछ भी हो, बसंती की नाच रंग जमा गई और तुम्हारी तंबाकू खाने की अदा सबको पसंद आ गई। मैंने कहा, अंकल कुछ भी हो, बसंती की नाच रंग जमा गई, तुम्हारी तंबाकू खाने की अदा सबको पसंद आ गई। मैंने कहा, अंकल अंतिम सवाल, जब गब्बर का रोल सबको इतना पसंद आया तो ऐसे ही रोल आप आजकल क्यों नहीं करते हैं। तो अंकल ने कहा, बेटा आजकल के गब्बर बसंती से डरते हैं। आपने अभी देखा कि आजकल के गब्बर किस तरह बसंतियों से डरते हैं। इस गब्बर और बसंती से कहीं ज़्यादा आजकल के पति अपने पत्नियों से डरते हैं। मुझे एक घटना याद आती है कि एक बैंक मैनेजर की बीबी कुछ दिन बाद मायके से लौटी तो बाहर से ही तलवारबाजी शुरू कर दी। बोली, मैं 3 महीने में 30 लेटर दी लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। बैंक मैनेजर ने कहा, डार्लिंग तुम्हारे सभी खत मिल गए थे, मैंने फाइल भी कर दिए, लेकिन तकलीफ इस बात की थी कि तुम्हारे स्पेसिमैन सिग्नेचर टैली नहीं हो रहे थे। और उसके बाद उनका तलाक हो गया। जब तलाक की बात आई तो मुझे एक घटना याद आती है। एक मित्र की शादी हो जाने के 1 साल बाद मेरे घर पर आए, मुझसे कहा कि अब मैं तलाक लेना चाहता हूँ। मैंने कहा, चलो। कोर्ट में गया, वकील से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद मैंने कहा, भाई ये जोड़ा तलाक लेना चाहता है, कृपया आप अपनी फीस बताएं। उन्होंने कहा, 5,000 रुपये लगेंगे। मेरे मित्र ने मुझसे कहा, यार मैं जब शादी कराने आया था तो 500 रुपये में हो गई थी, अब तलाक लेने आया हूँ तो 5,000 मांग रहे हैं। वकील ने कहा, साहब बात ऐसी है कि हमेशा स्वतंत्रता की कीमत कुछ ज़्यादा ही होती है।
बहुत बढ़िया।
और मैं कुछ आगे कहूँ उससे पहले मैं आपके सामने एक कविता रखने जा रहा हूँ, जो कविता एक फिल्म को लेकर लिखी गई है जिसमें एक गाना चला आतिक अखंडाला जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। मुझे विश्वास है कि आप कविता सुनने के बाद अपने जबान पर हमेशा कंट्रोल रखेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है आतिक अखंडाला। कि एक दिन मेरी बहन ने जो टीवी खोला तो टीवी बोला, आतिक अखंडाला, मैंने सुना, शब्द भाग गया मेरी जुबान पर, छा गया मेरी जुबान, बिन चलाए ही चल जाती, शब्दों को सुरों के साथ लेके निकल जाती। एक दिन बैठा क्लास में एक लड़की के पास में, नाम था रेखा, उसने मेरी तरफ देखा, मेरी जुबान का टूट गया ताला, मैंने कहा, आती क्या खंडाला। लड़की ने चप्पल निकाला, 2-4 जट डाला। मैंने कहा, यार जुबान में क्या चीज है, बिन चलाए ही चल जाती है, कभी रसगुल्ले तो कभी जूते खिलाती है। दूसरे दिन पार्टी थी पड़ोस में, मैं भी गया जोश में, जन्मदिन मनाया गया, सबको केक खिलाया गया। केक बांटने वाली महिला ने पूछा मेरा नाम, मैंने कहा, नाम से क्या है काम, पहले आप अपना नाम बताइए, साथ में केक भी खिलाइए। केक देते हुए महिला ने कहा, नाम है मधुबाला, मैंने अपने आप को बहुत संभाला लेकिन मेरी जुबान फिर बोल पड़ी, आती क्या खंडा। महिला साक्षात दुर्गा सी दिखी, जोरों से चिखी, बातों ही बातों में सब हो गए इकट्ठे, मौसा मौसी पड़ोसी मामा, हो गया हंगामा, पिटाई हुई खूब, चेहरा बन गया तरबूज, पीटने वाले पीटते रहे, हम चीखते रहे, हमारा निकल गया जोश, हम हो गए बेहोश, होश आया तो नसीब हुई थी हॉस्पिटल की खाट, बगल में खड़े थे नर्स डॉक्टर साथ, नर्स ने मराठी में पूछा, हे सगड़ कस झाला, और मैं कुछ कहता कि मेरी जुबान फिर बोल पड़ी, आती क्या खंडा। भाषा का कितना बड़ा योगदान होता है। मुझे याद है सुनील, जब मुझे मराठी नहीं आती थी तब मुझे एक कवि सम्मेलन में सांगली जाना हुआ, और सांगली कवि सम्मेलन खत्म हो जाने के बाद मैं पहुंचा तो आयोजक ने कहा कि साहब, आपका चेहरा देखने के लिए नहीं बुलाया था, कविता पढ़ने के लिए बुलाई थी, आप इतना देर कहाँ कर दिए। मैंने कहा क्या बताऊँ साहब, बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी। जिस बस में मैं बैठा था, मेरे बगल वाली सीट पर एक महिला बैठी थी, और बस जहाँ जहाँ रुकती वहाँ वहाँ वो कहती लव कर, और मैं लव करने लगा।
क्या बात है भाई।
रही लव की बात, तो मुझे एक घटना याद आती है। एक मेरे मित्र ने एक लड़की से लव किया, लव करने के बाद शादी भी कर ली। शादी हो जाने के बाद वो कमाने के लिए शहर आ गए, और 3 महीने बाद एक खुशखबरी सुनी कि उनकी बीबी को बच्चा पैदा हुआ है। घबरा गए, तुरंत टिकट कटाई गांव पहुंचे, बीबी को पूछा कि आपको 3 ही महीने में बच्चा कैसे क्या पैदा हो गया, दुनिया को 9 महीने में होता है, कौन सी जादू की पुड़िया आपने ली थी साहब। बीबी ने कहा तुम्हें मैथ आती है, बोले आती है, बोले मेरे शादी को कितने महीने हुए, बोले 3 महीने, बोले तुम्हारी शादी को, बोले 3 महीने, बोले बच्चा हो के, बोले 3 महीने, कुल 9 महीने हुए कि नहीं। ऐसे ही एक बच्चे के नामकरण की घटना मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं।
स्वागत है भाई।
कविता का नाम है नामकरण संस्कार। मेरे घर में पुत्र ने लिया जन्म, धूम धड़क्के से खुशी मनाई गई, हजारों किलो मिठाई बंटवाई गई। जब इस सभी संस्करण के बाद नाम संस्करण की आई बारी, तो नाम की तलाश हुई जारी। मेरे पिताजी ने कहा कि नाम कुछ ऐसा हो जो चारों तरफ मशहूर हो, जिसकी हर तरफ गूंज हो। मैंने कहा पिताजी, मेरे जहन में एक ऐसा नाम है जिसकी चारों तरफ गूंज है, जो हर तरफ मशहूर है। पिताजी को नाम बताने वाला ही था, तब तक टेलीफोन की घंटी बजी, और मेरे मित्र ने कहा कि आज मेरे घर में पुत्री ने जन्म लिया है। मैंने कहा मित्र, तुमने बड़ा पुनीत काम किया है, आज मेरे घर में पुत्र का नामकरण है, मगर तुम अपने पुत्री का नामकरण इस घड़ी ही कर देना, मैं अपने पुत्र का नाम लालू रख रहा हूँ, तू राबड़ी रख देना।
क्या बात है गौरा जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
आज हमारे देश के नेता ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोग कवि हैं, कवि अक्सर झूठ भी बोला करता है। एक मुझे घटना याद आ रही सुनील, कि एक कवि जब भी घर पे आता तो बीबी से लंबी लंबी डींगे मारता। आज मैंने आगरा में कविता पढ़ी आग लगा दी, आज मैंने बिहार में कविता पढ़ी आग लगा दी, आज मैंने सतारा में कविता पढ़ी आग लगा दी। एक दिन बीवी ने पकड़ लिया, बोला गैस खत्म हो गई है, चूल्हे में आग लगा के बताओ तो जाना।
वाह भाई वाह।
और रही आग की बात, तो मेरे पड़ोस वाली आंटी बिना आग के ही जलती हैं, और क्या कारण है मैं जलन के राज के माध्यम से आपके सामने रखने जा रहा हूँ। विश्वास रखता हूँ कि आपको यह कविता काफी पसंद आएगी।
स्वागत है भारत भाई। स्वागत।
कि मेरी पड़ोस की आंटी को पिछले कुछ दिनों से सीने में है जलन की बीमारी, मिजाज भी चिड़चिड़े हो गए हैं, घर में मचाए रहती है मारा मारी, अंकल के बचे खुचे बालों को नोच नोच कर वीरान कर दिया है, और रोज रोज के हाउस वार ने सबको परेशान कर दिया है। एक दिन अंकल बड़े ही चिंतित दिखाई पड़े, एक जगह खड़े थे, हाथों में दवाई लिए। मैंने कहा अंकल, आपकी चिंता का क्या है कारण, आपने किया है क्यों ऐसा रूप धारण। तब अंकल ने आप बीती रो रो करके बतलाई, मैंने झट एक युक्ति सुझाई। मैंने कहा अंकल, मेरे घर में फ्रिज है और उसमें बर्फ जमता है, उस बर्फ को आप रोज लेकर जाइए, आंटी के पूरे शरीर पर लगाइए, शरबत में डालकर पिलाइए, जलन का काम तमाम हो जाएगा, रोज रोज की झंझटों से आराम हो जाएगा। यह सुन अंकल बोले बेटा, तेरी बात सब ठीक है, तू बड़ा होशियार एवं चालबाज है, पर शायद तुझे पता नहीं, तुम्हारा फ्रिज ही तुम्हारे आंटी के जलन का राज है, तुम्हारा फ्रिज ही तुम्हारे आंटी के जलन का राज है।
बहुत बढ़िया।
जहां तक जलन की बात है, तो मैं आपको बता दूं जलन सिर्फ बड़ों में ही नहीं बच्चों में भी होती है। मेरे बाजू में रामू श्यामू नाम के दो बच्चे रहते हैं। एक दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। रामू ने कहा श्यामू से, श्यामू तेरी बहन से मेरी बहन अच्छी है। रामू ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन तेरी बहन से अच्छी है। फिर श्यामू ने कहा मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा है। फिर रामू ने कहा नहीं नहीं, मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा है। फिर श्यामू ने कहा मेरी मम्मी तेरे मम्मी से अच्छी है। तो रामू ने कहा कि ये तो मेरे पापा भी कहते हैं। लेकिन पापा बनने से पहले या एक पति बनने से पहले कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसी घटना चक्र में मैं आपके सामने कविता रखने जा रहा हूँ, जिसका नाम है घरवाली की तलाश। तो आपके सामने प्रस्तुत है घरवाली की तलाश। कि एक मानवर ने शादी कराने की सोची और शादी कराने वाली एजेंसी खोजी, पंडित से की मुलाकात, अपना पूरा बताया हालात। पंडित ने कहा आपको कैसी लड़की चाहिए, उसकी रूपरेखा बताइए। नवयुवक ने कहा जो मॉडल के दायरे में आए और मन को विभाए, बच्चे होने पर नहलाए धुलाए, बच्चों को पढ़ाए लिखाए और मेरा ध्यान दे घर बार भी चलाए। तब पंडित ने कहा चलिए आपको दो चार मॉडल दिखाता हूँ, साथ में कमीशन भी बताता हूँ। पंडित जी घुमाते घुमाते एक डांसिंग बार में ले गए और एक डांसर को दिखाया, उसके बारे में बताया और कहा जब आप इनसे करेंगे शादी तो सदा बने रहेंगे खुश मिजाजी और आपकी तमन्ना भी होगी पूरी। मॉडल है कमाऊ साथ में गोरी, रही बात बच्चे की तो एक आया रख लेना, यह तो कमा ही रही है उसी में से दे देना। अपने पैसे तो छोड़िए, यह आपके पैसे भी बचाएगी, राशन खरीदने की ना होगी जरूरत, होटल से खाना लाएगी और एक राज की बात, आज पति पत्नी के सामने नाश्ता है मगर यह आपको खुद नाच के दिखाएगी। और रही घर बार की बात तो घर तुम चलाना बारे चलाएगी। आपने देखा कि घरवाली की तलाश करते करते व्यक्ति कहाँ पहुँच जाता है। मुझे घटना याद आ रही है कि मेरे बगल वाले चाचा ने कुछ मुर्गियाँ पाल रखी हैं और उनके साथ एक दिन बड़ी अजीबोगरीब घटना घटी। एक स्कूटर वाला उनके घर के सामने से गुजर रहा था और स्कूटर के नीचे चाचा जी की मुर्गी आ गई, मुर्गी मर गई। चाचा जी ने पकड़ा, बोला 400 निकाल। स्कूटर वाले ने कहा चाचा जी मुर्गी तो 200 की आती है, आप 400 क्यों मांग रहे हो? बोले जब मुर्गे को पता चलेगा कि उसकी मुर्गी मर गई तो मुर्गा जिंदा रहेगा क्या? वो मेरे चाचा जी थे, मैं उनसे भी कभी कभी कुछ मांगने जाता हूँ। एक बार क्या मांगने गया और क्या दिए आपके सामने कविता के माध्यम से रख रहा हूँ। कि एक दिन बगल वाले चाचा से मैंने कहा चाचा इधर आइए, चाचा ने कहा फरमाइए। मैंने कहा मुझे आपके स्त्री की ज़रूरत है, सुना है कल ही आई है, बड़ी खूबसूरत है। चाचा ने कहा बेटा तुझे गलत फहमी हो गई है, ये तो बहुत दिन पहले से आई है, ये बात तुझे आज किसने बताई है? चाचा जी ने सुनो जी कह के बाहर बुलाया, मेरा परिचय कराया, मैं घबराया। मैंने कहा चाचा मुझे तो कपड़े वाली चाहिए। मैंने कहा चाचा मुझे तो कपड़े वाली चाहिए। चाचा ने कहा बेटा दिखाई नहीं देता क्या, जाइए चश्मा लगा के आइए। मैंने कहा चाचा क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, नहीं देनी है तो क्यों ना कह देते कि चले जा रहे हो, मुझे तो वह चाहिए थी जो करंट से चलती है। चाचा ने कहा बेटा इसमें इतना करंट है कि बिना कनेक्शन के ही बगल वाली जलती है, बिना कनेक्शन के ही बगल वाली जलती है। औरतों के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है कि एक लकड़हारा लकड़ी काटता था। एक दिन लकड़ी काट रहा था, उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर गई। वो ढूंढने लगा, कुल्हाड़ी मिल नहीं रही थी, बहुत परेशान हुआ, रोने लगा। ऊपर से शंकर जी और पार्वती जी जा रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि एक लकड़हारा बहुत रो रहा है, शंकर जी से कहा शंकर जी वो लकड़हारा आपका भक्त है, क्यों परेशान है, जरा भला आकर आज हम लोग देखें। तो दोनों जन नीचे आए, लकड़हारा से कहे भाई क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले प्रभु जी क्या बताऊँ, मेरी लकड़ी काटने का साधन अर्थात कुल्हाड़ी इस तालाब में गिर गई और मिल नहीं रही है, मेरी रोजी रोटी का तलाश खत्म हो जाएगी अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो। बोले बस इतनी सी बात है। तुरंत शंकर भगवान जी ने अपना हाथ तालाब में डाला और हीरे की कुल्हाड़ी निकाल के दी। लकड़हारे ने कहा साहब ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं किसी और की है। बड़े ताजुब माना शंकर जी ने। फिर दोबारा हाथ डाला, सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी। लकड़हारे ने कहा कि ये भी मेरी नहीं है। पार्वती जी खुश हुई, बोली क्या ईमानदार व्यक्ति है। फिर तिबारा शंकर जी ने अपना हाथ उस तालाब में डाला, फिर लोहे की निकाल के दी। लकड़हारे ने कहा हाँ प्रभु जी यही मेरी है। उसके ईमानदारी से खुश होकर के तीनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को दे दी। लकड़हारा अरबपति बन गया, शादी कर ली। 20-25 साल बाद एक बार फिर लकड़हारा एक जगह बैठ के रो रहा था और शंकर जी पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। फिर देखा कि वह लकड़हारा रो रहा है, नीचे उतरे। बोले क्या बात है लकड़हारे? तो लकड़हारे ने कहा कि प्रभु 20 साल पहले मेरी कुल्हाड़ी खोई थी, आज मेरी बीवी खो गई है। पार्वती जी ने शंकर जी से अनुरोध किया, शंकर जी इसकी बीवी तुरंत यहाँ हाजिर की जाए। शंकर जी ने ऐश्वर्या राय को बुलाया, लकड़हारे से पूछा क्या तेरी यही बीवी है? लकड़हारे ने कहा हाँ प्रभु यही है। शंकर जी परेशान, बोले 20 साल पहले तो तू बड़ा ईमानदार था, लेकिन आज तुझे क्या हो गया कि तू बड़ी बेईमानी के साथ कह रहा है कि मेरी यही बीवी है? बोले बात ऐसी है प्रभु कि 20 साल पहले मेरी जब लोहे की कुल्हाड़ी खोई थी तो आपने पहले हीरे की निकाली, फिर सोने की निकाली, फिर जा करके कहीं मेरी निकाली। आप इस बार भी ऐसा ही करते, पहले ऐश्वर्या को बुलाया, फिर ममता को बुलाते, फिर जा करके कहीं मेरी बीवी को बुलाते। ये तीन बीवियों के पालने की हैसियत मेरे पास नहीं है प्रभु, इसलिए मैंने ऐश्वर्या राय को ही स्वीकार किया, इसके लिए आप मुझे माफ करें।